योएल की पुस्तक और लाओदीकिया की सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 21।
और जिस समय से नित्य बलिदान हटाया जाएगा और उजाड़ करने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी, उस समय से 1290 दिन होंगे। दानियल 12:51।
ईस्ती अक्टूबर 1856 से चापावंग तकले चरणों में सत्य के वचन को ठीक प्रकार से विभाजित करना चाहने वालों के लिए भविष्यचक समय का अनुप्रयोग अब भविष्यवाणी में सही अनुप्रयोग नहीं रहा। पद 11 में 132 नौबे वर्षों की अवधि को 1856 के बाद प्रतीकात्मक अवधि के रूप में लागू किया जाना है और 1856 से सुन्न का अनुप्रयोग या समय के तत्वों के बिना किसी अवधि का अनुप्रयोग सत्य की मौलिक समझ को बनाए रखे जैसी कि 1856 से पहले समझी गई थी। 132 नौबे का अर्थ है 30 वर्षों की एक अवधि जिसके बाद 160 वर्ष आते हैं। 1856 से पहले यह समझ थी कि 1507 से पत्रय तक के 30 वर्ष पत्रय से 1715 तक मसीह विरोधी द्वारा शासन आरंभ करने की तैयारी की अवधि का प्रतिनिधित्व करते थे। तू थिसलोनीकियो में पौलुस का विषय 30 वर्षों का संक्रमण है। पौलुस समय के तत्व का कोई उल्लेख नहीं करता, परंतु वह उन 30 वर्षों में पैगनवाद के पापाई व्यवस्था के लिए रास्ता छोड़ने की भविष्यवाणी संबंधी विशेषताओं की पहचान करता है। तब पापाई शासन प्रारंभ हुआ। समय के तत्व के बिना की गई ऐतिहासिक समझ बाइबल की भविष्यवाणी के चौथे राज्य से पांचवें राज्य में संक्रमण की पहचान करती है, जिसके बाद दो पापाई रक्त स्नानों में से पहला आता है और इस प्रकार ये छठे राज्य के उस संक्रमण को प्रतीकित करता है जो अजगर पशु और झूठे नबी के त्रिविध संग तथा दूसरे पापाई रक्त स्नान तक पहुंचता है। 30 वर्षों की तैयारी जिसके बाद एक भविष्यद्वाणी का काल आता है, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के साथ उसकी वाचा का एक मुख्य प्रतीक है। 30 वर्षों में दो शक्तियों के बीच होने वाला हस्तांतरण जिसके बाद 1059 वर्षों का उत्पीड़न होता है, मसीह की 30 वर्षों की तैयारी से मेल खाता है, जिसके बाद 1059 दिनों का उद्धार आता है। मसीह विरोधी की 30 वर्षों की तैयारी मसीह की 30 वर्षों की तैयारी का जाली अनुकरण थी। इन 30 वर्षों का अंत या तो मसीह के बपतिस्मा के समय हुए उनके सशक्तिकरण की ओर संकेत करता है या 527 में मसीह विरोधी के सशक्तिकरण की ओर। मसीह विरोधी का सशक्तिकरण पूर्ववर्ती राज्य से प्राप्त आर्थिक और सैन्य समर्थन से आया और मसीह पर उंडेली गई शक्ति उस पूर्ववर्ती राज्य से आई जिसे उन्होंने 30 वर्ष पहले छोड़ दिया था। दो अवधियों के बीच का विभाजन एक सशक्तिकरण द्वारा चिह्नित है और अब्राम और पौलुस द्वारा प्रतिपादित दो अवधियों का ये विभाजन सरल तुलना से पहचाना जा सकता है। अब्राम और पौलुस के 30 वर्षीय भेद में तैयारी की अवधि पहले 30 वर्षों की थी जो वाचा की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसने अब्राम के वंशजों को मिस्र में दासत्व की भविष्यवाणी पूरी करने के लिए सशक्त किया। 340 वर्षों का एक और प्रतीकात्मक विभाजन भी है, क्योंकि उचित रूप से समझने पर पहले 315 वर्षों का प्रतिनिधित्व परमेश्वर के प्रतिनिधि और फिरौन द्वारा किया जाता है। यूसुफ और पहले 315 वर्षों के लिए फिरौन अच्छा था और मूसा और दूसरे 315 वर्षों के लिए फिरौन बुरा था। वो विभाजन चार चार पीढ़ियों के दो कालखंडों की पहचान कराता है। पहली चार पीढ़ियों को दूसरी चार पीढ़ियों के ऊपर पंक्ति दर पंक्ति रखा जा सकता है और ऐसा करने पर यूसुफ और मूसा भविष्य सूचक अल्फा और ओमेगा, एक अल्फा अच्छे फिरौन और एक ओमेगा बुरे फिरौन के साथ संबंधित होते हैं। इस समांतर विचार से बहुत प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, पर मैं केवल ये इंगित कर रहा हूं कि चौथी पीढ़ी के विषय में अब्राम की भविष्यवाणी 430 वर्षों के भीतर चार पीढ़ियों के दो साक्षियों की पहचान कराती है। चार पीढ़ियों का दोहरा निरूपण उत्पत्ति के अध्याय 4 और 5 की वंशावलियों में मिलता है। जब हम वंश रेखाओं की सूची की शुरुआत के रूप में कैन और शेत को मानते हैं तो हमें मिलता है कि शेत से नूह तक 8 पीढ़ियां हैं और यह कि जब इसे बीच से विभाजित किया जाए तो चार चार पीढ़ियों के दो कालखंडों का निरूपण मिलता है। ये बात शेत और कैन दोनों की 8-8 पीढ़ियों की वंश रेखाओं में पहचानी जाती है। अध्याय 4 और 5 की वंशावलियां अंततः नूह पर आकर समाप्त होती हैं। नूह इंद्रधनुष द्वारा दर्शाई गई मानव जाति के साथ परमेश्वर की वाचा का प्रतीक है। अब्राम खतना द्वारा दर्शाई गई चुनी हुई प्रजा के साथ परमेश्वर की वाचा का प्रतीक है। ये दोनों वाचाएं हमेशा परस्पर जुड़ी रहती हैं और उत्पत्ति अध्याय 11, जहां नूह के जलप्रलय के तुरंत बाद बाबेल की मीनार का वर्णन मिलता है, वहीं वो वंशावली दी गई है जो अब्राम तक पहुंचती है। उस खंड में ये 8 नहीं 10 पीढ़ियां हैं। अब्राम तक ले जाने वाले खंड और नूह तक ले जाने वाले खंड दोनों में क्रमशः नूह की वाचा और अब्राहिमी वाचा का निरूपण होता है।
11वें अध्याय के उस अनुच्छेद में जो चुनी हुई प्रजा को संबोधित करता है, हम पाते हैं कि उन्हीं पीढ़ियों में से दो महान प्रकाश से परिपूर्ण हैं।
और एब्रो 34 वर्ष का था जब उसने पेलेग को जन्म दिया, और पेलेग को जन्म देने के बाद एब्रो 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसने पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया। और पेलेग 30 वर्ष का था जब उसने रेऊ को जन्म दिया। उत्पत्ति 11:16-19।
एबर का उल्लेख उस इब्रानी शब्द का पहला उल्लेख है जिसे आगे चलकर इब्रानी शब्द के रूप में पहचाना जाता है। चुनी हुई प्रजा की वंशावली में 10 वंशजों में से एक का नाम इब्रानी है, और चुनी हुई प्रजा इसी नाम से जानी जाने वाली थी। 3 पदों में एबर और पेलेग का उपयोग चुनी हुई इब्रानी जाति की भिन्नता को चिह्नित करने के लिए किया गया है। एबर का अर्थ पार जाना या जो पार जाता है, और ये इब्रानी शब्द का मूल है। अब्राम उन लोगों का प्रतीक है जो बाबुल से प्रतिज्ञाज देश की ओर पार जाते हैं। पेलेग का अर्थ विभाजन या बंटवारा है, जैसा कि उत्पत्ति 10:25 में उल्लिखित है, जहां बताया गया है कि पेलेग के दिनों में पृथ्वी विभाजित हुई।
एबर और पेलेग उन लोगों के लिए एक भविष्य सूचक विभाजन का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करना चाहते हैं। नूह की वंशावली में 8:8 के दो क्रम हैं जो 4-4 पीढ़ियों के दो समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसा ही मिस्र में 430 वर्षों के साथ भी है। उत्पत्ति अध्याय 11 की वंशावली 8 नहीं 10 से निरूपित है, क्योंकि वो चुने हुए लोगों की वंशावली है। चुने हुए लोग 5-5 के दो समूहों में विभाजित हैं। इस प्रकार ये 10 कुमारियों के दृष्टांत के अनुरूप है जो परमेश्वर की वाचा के लोगों का दृष्टांत है।
उस चुनी हुई प्रजा की वंशावली में पेलेग का नाम और उसकी ऐतिहासिक पूर्ति बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों के दो वर्गों के विभाजन का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाइबली इतिहास के ठीक उसी बिंदु पर जब बाबेल की मीनार के समय पृथ्वी विभाजित हुई थी। 10 की सूची में पेलेग 5वें स्थान पर है, क्योंकि वही 10 का मध्य है। एब्र इब्रानी, जिसका प्रतिरूप अब्राम है, उस मूर्ख कुमारी का प्रतिनिधित्व करता है जो पार होकर बुद्धिमान कुमारी बनती है, जब आधी रात की पुकार पर दोनों वर्ग विभाजित किए जाते हैं। नाम से पहला इब्रानी एब्र, वाचा से पहला इब्रानी अब्राम का प्रतिनिधित्व करता है। जब प्रभु ने अब्राम को बाबुल से बाहर बुलाया, तो उसने आधी रात की पुकार के संदेश का प्रतीक प्रस्तुत किया जो दूसरे स्वर्गदूत का सशक्तिकरण है जो पुरुषों और स्त्रियों को बाबुल से बाहर बुलाता है।
10 कुवारियों का दृष्टांत एबर और पेलेग के द्वारा ऐसे दर्शाया गया है कि वे बाहर निकलने का आह्वान करते हैं ठीक उससे पहले जब पेलेग की विभाजन रेखा अनुग्रह के द्वार को बंद कर देती है। भविष्य सूचक संदर्भ में एबर पेलेग के बाद 430 वर्ष जीवित रहा, और पेलेग फिर 30 वर्ष जिया। अब्राम की 3 भाग वाली वाचा का पहला चरण एबर और पेलेग द्वारा दर्शाया गया। अब्राम को एबर के रूप में और पेलेग को दो वर्गों के बीच विभाजन रेखा के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब्राम की भविष्यवाणी में पौलुस का जोड़, एबर की भविष्यवाणी में पेलेग का जोड़ है। एबर ने 400 वर्षों की घोषणा की, परंतु पेलेग ने 430 वर्षों को चिन्हित किया। अतः पेलेग ने पौलुस का प्रतिनिधित्व किया, और 400 वर्षों में 30 वर्षों का पौलुस का जोड़ तथा पौलुस की सेवकाई बाइबिलीय भविष्यवाणी के पेलेग की पहचान करना था। पौलुस ने जिस बाइबिलीय भविष्यवाणी के पेलेग की पहचान की, उसने राष्ट्र के शाब्दिक से आत्मिक में विभाजन का प्रतिनिधित्व किया।
शेम से पेलेग तक 5 वंशज है, और रू से अब्राम तक भी 5 है।
और उसने अब्राम से कहा,
निश्चय जान ले कि तेरी संतान उस देश में परदेशी होकर रहेगी जो उनका नहीं होगा। वे उस देश के लोगों की सेवा करेंगे और वे लोग उन्हें 400 वर्ष तक सताएंगे। उत्पत्ति 15:13।
अब अब्राहम और उसकी संतान को प्रतिज्ञाएं दी गईं। वो ये नहीं कहता, और संतानों को जैसे कि बहुतों के विषय में बल्कि एक के विषय में, और तेरी संतान को जो मसीह है। और मेरा कहना ये है कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से मसीह में स्थिर की थी उसके 430 वर्ष बाद आई हुई व्यवस्था उसे रद्द नहीं कर सकती कि वो प्रतिज्ञा को निष्फल कर दी, क्योंकि यदि विरासत व्यवस्था से है तो वो फिर प्रतिज्ञा से नहीं। परंतु परमेश्वर ने वो अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी। गलातियों 3:16-18।
30 साल की उम्र यीशु 30 वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी सेवकाई आरंभ की,
और स्वयं यीशु की आयु लगभग 30 वर्ष की थी। वो जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और यूसुफ हेली का पुत्र था। लूका 3:23-2।
जोसेफ ने 30 वर्ष की आयु में मिस्र में फिरौन की सेवा शुरू की,
और यूसुफ 30 वर्ष का था जब वो मिस्र के राजा फिरौन के सामने खड़ा हुआ, और यूसुफ फिरौन की उपस्थिति से निकलकर मिस्र के सारे देश में गया। उत्पत्ति 41:40 तक।
जब भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने अपनी सेवा शुरू की तब वे 30 वर्ष के थे, और उनकी सेवा 22 वर्षों तक चली।
30वें वर्ष में चौथे महीने की 5वीं तारीख को जब मैं चेबार नदी के किनारे निर्वासितों के बीच था, तब आकाश खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन देखे। यहेजकेल 1:1।
यहेजकेल की रचनाओं में ऐतिहासिक संदर्भ किसी भी अन्य भविष्यद्वक्ता की तुलना में अधिक है। यहेजकेल के लेखनों में निर्धारित की जा सकने वाली तिथियों के 13 प्रत्यक्ष संदर्भ है, और अनजाने में बाइबिल के विद्वान और इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसकी सेवकाई 22 वर्षों तक फैली रही, हालांकि वे ये नहीं जानते कि 22,44,000 का प्रतीक है। राजा दाऊद की उम्र 30 वर्ष थी जब उन्होंने शासन करना शुरू किया, और उन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया।
जब दाऊद ने राज्य करना शुरू किया तब उसकी आयु 30 वर्ष की थी, और उसने 40 वर्ष तक राज्य किया। हेब्रोन में उसने यहूदा पर 7 वर्ष और 6 महीने तक राज्य किया, और यरूशलेम में उसने समस्त इज़राइल और यहूदा पर 33 वर्ष तक राज्य किया। 2 शमूएल 5:4-5।
दाविद के 40 वर्षों के शासनकाल की संख्या प्रतीकात्मक है, और 40 की ये अवधि अब्राम और पौलुस के 433 वर्षों के समान है, क्योंकि इन 40 वर्षों को दो भागों में बांटा गया है, 7 वर्ष और 6 महीने तथा 33 वर्ष। दाविद के 40 वर्षीय शासनकाल की इन दो अवधियों में एक अतिरिक्त भविष्य सूचक पहेली है, क्योंकि एक अन्य बाइबल साक्षी इन्हीं दो अवधियों को 7 वर्ष और 33 वर्ष के रूप में दर्ज करता है। दूसरा शमूएल में बताए गए अतिरिक्त 6 महीने क्या दर्शाते हैं, और 7.5 और 33 मिलकर 40 कैसे होते हैं? 6 महीनों का एक अतिव्यापन है जो किसी भविष्य सूचक सत्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
दाऊद ने इसराइल पर कुल 40 वर्ष राज्य किया। हेब्रोन में 7 वर्ष राज्य किया, और यरूशलेम में 33 वर्ष राज्य किया। 1 राजा 2:11।
22 एक प्रतीकात्मक संख्या है जो दैवीयता और मानवता के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है, और यहेजकेल की सेवकाई 22 वर्षों तक चली। यूसुफ के 14 वर्ष 2 7-7 वर्षों की अवधियों में विभाजित है। मसीह की वाचा का सप्ताह 2 समान 260 दिवसीय अवधियों में विभाजित है, और दाऊद का 40 वर्षीय शासन 2 अवधियों में बांटा गया है, और उन दोनों को जोड़ने वाला एक अतिरिक्त प्रतीक है। यीशु भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा है। अंत के दिनों में वह अपनी विजय कलीसिया को ध्वज के समान ऊंचा उठाएगा, और उस कलीसिया का प्रतिनिधित्व मसीह करते हैं। भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा, जिन्होंने अपनी दैवीयता को मनुष्यों के साथ एक किया है, जिसका निरूपण भविष्यद्वक्ता यहेजकेल, याजक यूसुफ और राजा दाऊद द्वारा होता है। ये 4 प्रतीक उस भट्टी में 3 धर्मी पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म किया गया था, और तब वहां 4था दिखाई दिया, और वो परमेश्वर के पुत्र के समान था।
नबूकदनेस्सर की सोने की मूर्ति के समारोह में समस्त संसार का प्रतिनिधित्व था और उन सब ने उस विजयी कलीसिया को देखा जो एक मानव भविष्यद्वक्ता, एक मानव याजक और एक मानव राजा से बनी थी, जिसे चौथे दैवीय व्यक्ति द्वारा समर्थित किया गया था।
शैतान ने संसार को बंदी बना लिया है। उसने एक मूर्तिपूजक सप्त प्रवर्तित किया है और उसे जाहिर तौर पर बड़ा महत्व दिया है। इस मूर्तिपूजक सप्त के लिए उसने प्रभु के सप्त से मसीही संसार की आराधना छीन ली है। संसार एक परंपरा, मनुष्यों द्वारा बनाई गई आज्ञा के आगे झुकता है, जैसे नबूकदनेस्सर ने दूरा के मैदान में अपनी सोने की मूर्ति खड़ी की और इस प्रकार अपने आप को ऊंचा ठहराया, वैसे ही शैतान इस झूठे सप्त में अपने आप को ऊंचा उठाता है, जिसके लिए उसने स्वर्गीय परिधान चुरा लिया है। रिव्यू एंड हैरल्ड, March 8, 1898।
संख्या 4।
भविष्यवाणी के स्तर पर 40 अब्राम के 400 का दशमांश है और 4 40 का दशमांश है। संख्या 4 में पाई जाने वाली कोई भी भविष्यवाणी संबंधी विशेषता 40 के प्रति हिक्कावाद के साथ मेल खानी चाहिए और वह आगे चलकर 400 के प्रतीकवाद के साथ भी मेल खानी चाहिए। संदर्भ में 4 प्रायः विश्वव्यापी संभल का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक परिचित समझ है, लेकिन ये एक क्रमिक प्रगति का भी प्रतिनिधित्व करता है और कुछ संदर्भों में क्रमिक विनाश का।
7 तुरहियों में से पहली 4 पश्चिमी रोम के क्रमिक विनाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल में पूर्वी रोम का अंत 4 उस्मानी सुल्तानों के अधीन हो जाने में हुआ। कदम दर कदम पूर्वी और पश्चिमी रोम 4 अवधियों में, जिन्हें 4 तुरहियां दर्शाती हैं, क्रमशः विघटित होते गए और साथ ही 5वीं और 6ठी तुरही में संबद्ध इस्लाम द्वारा भी ढहाए गए। साथ मिलकर ये दोनों क्रम तुरहियों के 4 चरणों में रोम के पतन की पहचान कराते हैं, जबकि इस्लाम के साथ बढ़ता हुआ युद्ध अंततः उस समय अंतिम पतन तक ले जाता है जब इस्लाम के 4 सुल्तान राज्य पर सर्वोच्चता स्थापित कर लेते हैं। पश्चिम और पूर्व का इतिहास 330 में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा साम्राज्य के विभाजन से आरंभ हुआ।
पश्चिमी रोम की 4 तुरहियां 730 में आरंभ होती है और 5वीं व 6ठी तुरही उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पूर्वी रोम को गिराती हैं, और पूर्वी रोम भी 730 में आरंभ हुआ था। 583 में पापाई सत्ता को पृथ्वी के सिंहासन पर बैठाने के कार्य में पूर्वी और पश्चिमी दोनों रोम ने योगदान दिया। इसलिए पश्चिमी और पूर्वी की ये दो धाराएं संयुक्त राज्य अमेरिका के दो सींगों का प्रतीक हैं, जो रविवार के कानून के समय पापाई सत्ता को फिर से सिंहासन पर बैठाता है। भविष्यवाणी के संदर्भ में पश्चिमी रोम धर्म सत्ता का प्रतीक है और पूर्वी रोम राज्य सत्ता का प्रतीक है। पश्चिमी और पूर्वी रोम के पतन के इतिहास के भीतर पोप शासित रोम का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इफिसुस द्वारा प्रतिनिधित्व की गई शिष्यों की कलीसिया से आरंभ होकर पहली 3 कलीसियाएं चौथी कलीसिया तक ले जाती हैं, जो 538 से 7893 तक का पोप शासन है। प्रकाशित वाक्य 13 में बताया गया है कि रविवार के कानून के समय 1798 का उसका घातक घाव भर जाने के बाद पोप शासन 42 महीने तक राज करेगा। 1844 के बाद समय अब नहीं रहा, इसलिए 42 महीने उस उत्पीड़न काल का प्रतीक है जो रविवार के कानून से लेकर मिखाइल के खड़े होने तक रहेगा। अग्रदूतों ने समझा कि कलीसियाए, मुहरे और नरसिंगे इतिहास की 3 रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। पश्चिमी रोम की भविष्य सूचक गवाही को पूर्वी रोम की रेखा और पोप शासित रोम की रेखा पर रखकर देखना वो भविष्यवाणी संबंधी अनुप्रयोग नहीं है जिसका प्रयोग मिलराइटों ने किया था, परंतु ये विधि उनकी किसी भी स्थापित समझ का खंडन नहीं करती। पंक्ति दर पंक्ति पहली 4 तुरहियां 5वीं और 6ठी तुरही द्वारा प्रस्तुत इतिहास पर अधिरोपित की जाती हैं, और फिर पहली 3 कलीसियाओं की वो रेखा आती है जो चौथी कलीसिया द्वारा दर्शाए गए पापाई उत्पीड़न के काल तक ले जाती है। पहली रेखा पर 4 तुरहियां, दूसरी रेखा पर 4 सुल्तान और तीसरी रेखा पर 4 कलीसियाएं 4 संख्या विश्वव्यापकता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ये किसी राजनीतिक या धार्मिक सत्ता के क्रमिक विनाश का भी प्रतिनिधित्व करती है। ये क्या प्रतिनिधित्व करती है, ये संदर्भ से निर्धारित होता है। रविवार के कानून के समय पोप की सत्ता पुनर्स्थापित होती है। पहली बार जब पोप सत्ता को सशक्त किया गया तब 30 वर्षों की तैयारी की अवधि थी। पहली चार कलीसियाओं में चौथी कलीसिया पोप सत्ता है और पहली कलीसिया शिष्यों की थी, जिसे इफिसुस के रूप में दर्शाया गया है। मसीही कलीसिया की पहली तीन पीढ़ियां चौथी कलीसिया थायातीरा तक ले गईं, जिसका प्रतिनिधित्व जेजेबेल करती है थायातीरा के समय 530 ईसा में। ऑर्लियंस की काउंसिल में एक रविवार का कानून लागू किया गया और इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून की पहचान होती है, जब 1798 का घातक घाव भर जाता है। पहली चार कलीसियाएं 1798 से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून तक का इतिहास दर्शाती हैं। चौथी कलीसिया थुआतीरा रविवार के कानून और उसके बाद होने वाले पोप के शासन के अधीन उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करती है। पहली कलीसिया इफिसुस, वह कलीसिया जिसने अपना पहला प्रेम खो दिया, चार चरणों वाली प्रगतिशील विनाश प्रक्रिया के निष्कर्ष पर अर्थात थुआतीरा के रविवार के कानून पर जाकर समाप्त हुई। थुआतीरा के रविवार के कानून तक ले जाने वाली पीढ़ी पर्गमोस की तीसरी पीढ़ी है। थुआतीरा अनुग्रह काल के समापन तक रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है और पर्गमोस उस तीसरी पीढ़ी के समझौते का प्रतिनिधित्व करता है जो थुआतीरा के लिए मार्ग तैयार करता है। पर्गमोस की तीसरी पीढ़ी और उसके द्वारा दर्शाया गया समझौता पहली बार कॉन्स्टेंटाइन के समय में पूरा हुआ, जिसने 325 में सबसे पहला रविवार का कानून पारित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इफिसुस के मेमने के रूप में शुरुआत की, पर जब वो थुआतीरा को फिर से सिंहासन पर बैठाता है तो वो अजगर की भांति बोलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रमिक विनाश को प्रकाशित वाक्य की पहली चार कलीसियाएं दर्शाती हैं। बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य का क्रमिक विनाश चार पीढ़ियों में घटित होता है, जो रविवार के कानून तक ले जाती हैं, जहां पृथ्वी का पशु अजगर की भांति बोलता है। अंतिम पीढ़ी का प्रतिनिधित्व अजगर करता है, जो एक सरीसृप है जैसा एदन की वाटिका में था, और इसी कारण बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना और यीशु दोनों ने प्राचीन इसराइल की अंतिम पीढ़ी को विषधरों की पीढ़ी कहा। चौथी और अंतिम पीढ़ी या तो चुनी हुई पीढ़ी है, जो 144,000 का प्रतिनिधित्व करती है, या उसका प्रतिपक्ष सांपों की संतान। एक वर्ग ने मसीह का स्वरूप धारण किया है, दूसरे ने पशु अर्थात सर्प का स्वरूप धारण किया है। सांपों की संतान का वर्णन परमेश्वर के वचन में चार बार स्पष्ट रूप से किया गया है। प्रत्येक उल्लेख का प्रसंग भिन्न है।
पर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को अपने बपतिस्मा के लिए आते देखा तो उसने उनसे कहा, हे सांपों की संतान, तुम्हें आने वाले क्रोध से भागने की चेतावनी किसने दी? मत्ती 3:7।
यदि विषधर सांपों की संतान केवल उन कुछ संप्रदायों के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणियां भर होती जिन्हें यूहन्ना पसंद नहीं करता था, तो उस अभिव्यक्ति के बारे में कहने को कुछ भी न होता। परंतु परमेश्वर के वचन में हर शब्द पवित्र है, इसलिए यूहन्ना ने सदूकियों और फरीसियों को एक विशिष्ट उपाधि दी। वो उपाधि जिस खंड में व्यक्त की गई है उसके संदर्भ द्वारा भविष्यवाणीपूर्ण ढंग से परिभाषित होती है। उस खंड में यूहन्ना का अपनी सेवकाई को पूरा करना बताया गया है और फिर सदूकी और फरीसी कथा में प्रवेश करते हैं। प्रारंभिक पदों में यूहन्ना को यशाया की मरुभूमि में पुकारने वाले की आवाज के रूप में पहचाना गया है।
उन दिनों बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया और यहूदिया के मरुस्थल में प्रचार करता हुआ कहने लगा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि ये वही है जिसके विषय में भविष्यद्वक्ता यशायाह ने कहा था कि क्रिकेट मरुभूमि में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी राहें सीधी करो। और वही यूहन्ना ऊंट के बालों का वस्त्र पहनता था और अपनी कमर में चमड़े का कमरबंद बांधता था, और उसका भोजन टिड्डियां और जंगली शहद था। तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यर्दन के चारों ओर का सारा प्रदेश उसके पास निकल आया, और वे यर्दन में उससे बपतिस्मा लेते थे अपने पापों को स्वीकार करते हुए,
परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को उसके बपतिस्मा के लिए आते देखा तो उनसे कहा, हे सांपों की संतान, तुम्हें किसने आने वाले क्रोध से भागने के लिए सचेत किया? मत्ती 3:2-7।
प्राचीन इसराइल की अंतिम पीढ़ी को मरुस्थल से आए एक भविष्यद्वक्ता ने सांपों की संतान कहा। यूहन्ना वही भविष्यद्वक्ता था जिसने मलाकी द्वारा बताए गए उस दूत की भूमिका पूरी की, जो वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करता था। वही वो मरुस्थल में पुकारने वाले की आवाज भी था जिसका उल्लेख यशयाह ने किया था। यदि हम पत्ते को एक प्रतीक माने तो पाएंगे कि वे घोषणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला संदर्भ आदम और हव्वा के साथ है, जिन्होंने अपनी अधर्मिता को अंजीर के पत्तों से ढक लिया। उन्होंने पहले प्रकाश का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ था, पर जब वो चला गया तब उन्हें एहसास हुआ कि वे नंगे। लाउदी क्या है जो सोचते हैं कि उन्हें बस घोषणा के पत्तों के पीछे छिप जाना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे उस परिच्छेद में यूहन्ना लाओदीकियाई यहूदियों के इस भरोसे के विरुद्ध सीधे बोलता है कि अब्राहम की वंश रेखा उन्हें बचा लेगी, क्योंकि उनका दुराभिमान तो केवल घोषणा के खोखले पत्ते था। किसी व्यक्ति के वस्त्र ये प्रकट करते हैं कि वे कौन हैं। पेड़ मनुष्यों और राज्यों के प्रतीक होते हैं, और फल, शाखा, बीज, मिट्टी, पानी, जड़ और स्वाभाविक ही पत्ते, ये सब अपने आप में विशिष्ट भविष्य सूचक प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु इन प्रत्येक सत्यों का संबंध भविष्यवाणी की उन विभिन्न धाराओं के अन्य प्रतीकों से भी है जिनमें पेड़ का निर्माण करने वाले भविष्य सूचक प्रतीकों का उपयोग होता है। बेशक पेड़ का पहला भविष्य सूचक प्रतीकवाद ये है कि वो जीवन मृत्यु की परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यूहन्ना का संदेश उसके नापन वस्त्रों और उसके खाए भोजन से व्यक्त होता है। भविष्यवाणी का भोजन, जैसे प्राचीन इज़राइल की शुरुआत में मन्ना या अंत में स्वर्ग की रोटी, खा जाना चाहिए। ये भोजन एक परीक्षात्मक भविष्यवाणी संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे खा लेना आवश्यक है, क्योंकि वो मसीह का शरीर और उसका लहू है। यूहन्ना के पहने वस्त्र और खाया भोजन उस संदेश और उस दूत की पहचान कराते हैं जिसने मसीह के लिए मार्ग तैयार किया। यूहन्ना उस अंतिम दूत का प्रतिरूप है जो मसीह के लिए मार्ग तैयार करता है, और वो वाचा का दूत है जो रविवार के कानून के समय अचानक अपने मंदिर में आता है। जब ऐसा होता है तो मूर्ख कन्याएं जो लाओदीकियाएं हैं और खरपतवार भी उन लोगों की अंतिम चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपने आप को अब्राहम की वाचा की वैध प्रजा मानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे फरीसियों और सदूकियों ने उस समय किया था जब यूहन्ना जंगल से निकलकर प्रकट हुआ था। जॉन ने ऊंट के बालों का वस्त्र और एक चमड़ी की कमर पट्टी पहनी, जिसमें हार्नेस जैसा लगाव भी था, जैसा खेत के पशुओं के जुए के साथ होता है। उसने खाया और इसलिए उसका संदेश टिड्डियों का था, जो शास्त्रों में इस्लाम का एक प्रमुख प्रतीक है, और उसने अपने इस्लाम के संदेश को शहद के साथ मिला दिया।
और इज़राइल के घराने ने उसका नाम मन्ना रखा, और वो धनिये के दाने के समान सफ़ेद था, और उसका स्वाद शहद से बनी पपड़ी के समान था। निर्गमन 16:31 तक।
मन्ना परमेश्वर के वचन का प्रतीक है और उसका स्वाद शहद जैसा था, जिसे भविष्यद्वक्ताओं ने संदेश के स्वाद के रूप में पहचाना है, और भविष्यद्वक्ताओं को उसे खाते हुए दर्शाया गया है। जॉन टिड्डियों तथा ऊंट की खाल और ऊंट के बालों के कमरबंद द्वारा प्रतीकित इस्लाम का संदेश लेकर आए। टिड्डा और ऊंट दोनों इस्लाम के प्रतीक हैं। इस्लाम का वो संदेश परमेश्वर के वचन की उस ज्योति के साथ मिश्रित था जिसे शहद के रूप में दर्शाया गया है।
तब योनातान ने कहा, मेरे पिता ने देश को संकट में डाल दिया है। देखो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी आंखें कैसे चमक उठी हैं, क्योंकि मैंने इस शहद का थोड़ा सा स्वाद चखा है। 1 शमूएल 14:29।
यूहन्ना केवल इस्लाम के संदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, बल्कि वो जैसे एलिया भी जंगल से आया था, और यूहन्ना ने साधारण शहद नहीं, जंगली शहद खाया, क्योंकि वो मसीह की तरह अपने समय की उन संस्थाओं में प्रशिक्षित नहीं हुआ था जिनके पास अपने संदेश का अपना मधु था, जिसका प्रतीक फरीसियों और सदूकियों के खमीर से किया गया था। यूहन्ना ने जंगल का शहद खाया क्योंकि वो अपने समय की धार्मिक संस्थाओं से बाहर पवित्र आत्मा द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। उस काल के सामान्य कमरपट्टे में एक हिंज जैसी युक्ति होती थी जिस पर व्यक्ति अपने ऊंट के बालों का वस्त्र बांधता था। वो हिंज यूहन्ना का प्रतीक है जो सांसारिक से स्वर्गीय पवित्र स्थान की ओर मोड़ देने वाला बिंदु था।
भविष्यद्वक्ता यूहन्ना दो युगों के बीच जोड़ने वाली कड़ी थे। परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वे इस हेतु सामने आए कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का मसीही युग से क्या संबंध है ये दिखाएं। वे छोटी ज्योति थे जिसके बाद एक बड़ी ज्योति आने वाली थी। यूहन्ना का मन पवित्र आत्मा से प्रकाशित किया गया था ताकि वो अपनी प्रजा पर प्रकाश डाल सके, परंतु गिरे हुए मनुष्य पर उतनी स्पष्टता से कोई अन्य प्रकाश न कभी चमका है न कभी चमकेगा जितना यीशु की शिक्षा और उदाहरण से निकला हुआ प्रकाश। मसीह और उनके मिशन को, जिनका प्रतीक छायामय बलिदानों में किया गया था, केवल धुंधले रूप में ही समझा गया था। यहाँ तक कि यूहन्ना ने भी उद्धारकर्ता के द्वारा मिलने वाले भावी अमर जीवन को पूरी तरह नहीं समझा था। द डिजायर ऑफ एजेस 2:20।
यूहन्ना का हिंज वस्त्र मसीह के बपतिस्मा की सकेर ठीक उसी बिंदु पर प्रस्तुत होता है जो एक निर्णायक मोड़ था, जिसका प्रतीक वही स्थान है जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे। उस स्थान का नाम बेथाबरा था, जिसका अर्थ पार उतरने का घाट है, और वही स्थान है जहां प्राचीन इसराइल जंगल से निकलकर प्रतिज्ञात देश में प्रवेश किया था, ठीक वैसे ही जैसे यूहन्ना ने किया था। निस्संदेह 144,000 का आंदोलन वही है जिसका प्रतिनिधित्व यूहन्ना कर रहा है, पर हम बस ये इंगित कर रहे हैं कि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो वही वो पीढ़ी थी जिसे उन्होंने और यूहन्ना ने सांपों की संतान कहा। यीशु परमेश्वर की 10 आज्ञाओं की व्यवस्था को महान बनाने आए थे और बाइबल का हर शब्द उसी की प्रेरणा से है। इसलिए जब वो प्राचीन इसराइल की अंतिम पीढ़ी को सांपों की संतान कहते हैं तो वो भली भांति जानते हैं कि दूसरी आज्ञा उस न्याय की पहचान कराती है जो तीसरी और चौथी पीढ़ियों में पूरा किया जा रहा है। तीसरी और चौथी पीढ़ियां एक क्रमिक न्याय का प्रतिनिधित्व करती हैं जो चौथी पीढ़ी पर समाप्त होता है, और वही व्यालों की पीढ़ी है। मसीह का बपतिस्मा 9:11 का प्रतीक है। तब से 7वें दिन के एडवेंटिस्टों की लाओदिकियाई पीढ़ी अपनी अंतिम पीढ़ी में है। फरीसियों और सदूकियों के लिए यूहन्ना का संदेश लाओदिकियाई संदेश था,
परंतु जब उसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी उसके बपतिस्मा के लिए आ रहे हैं, तो उसने उनसे कहा, हे सर्पों की संतान, तुम्हें किसने आने वाले क्रोध से भागने की चेतावनी दी? इसलिए पश्चाताप के योग्य फल लाओ और अपने मन में ये न कहो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न करने में समर्थ है। और अब भी कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो कोई पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे काटकर आग में फेंक दिया जाता है। मैं तो पश्चाताप के लिए तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आता है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, उसके जूतों को उठाने के भी योग्य मैं नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह साफ करेगा और अपना गेहूं कोठार में इकट्ठा करेगा, पर वो भूसी को ऐसी आग से जला देगा जिसे बुझाया नहीं जा सकता।
तब यीशु गलील से यर्दन नदी पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आए। मत्ती 3:13।
यीशु गलील से आए जो यूहन्ना के कमरबंद के कब्जे को और बेथाबरा के अर्थ के अनुरूप एक मोड़ का प्रतीक है। मार्ग तैयार करने का यूहन्ना का कार्य तब वाचा की पुष्टि करने के मसीह के कार्य में बदल गया। 30 वर्षों की तैयारी समाप्त हो गई और क्रूस से पहले और बाद के 3.5 वर्ष आरंभ हुए। यूहन्ना का संदेश यरूशलेम के विनाश के समय आने वाले कोप की चेतावनी था, एक ऐसा विनाश जो संसार के अंत और अंतिम 7 विपत्तियों का भी प्रतीक है। वो चेतावनी संदेश इस्लाम के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था और इसे ऐसे व्यक्ति ने दिया जिसने न केवल मार्ग तैयार करने वाले मलाकी के दूत और जंगल में पुकारने वाली यशाया की वाणी को पूरा किया, बल्कि एलिया के संदेश को भी पूरा किया। क्योंकि जैसे यूहन्ना का संदेश एलिया के संदेश से मेल खाता था, वैसे ही उसकी पोशाक भी एलिया की पोशाक के समान थी।
और उसने उनसे कहा,
जो तुमसे मिलने आया और तुमसे ये बातें कही वो कैसा आदमी था?
उन्होंने उसे उत्तर दिया, वह एक बालों वाला आदमी था और अपनी कमर पर चमड़े का कमरबंद बांधे हुए था। तब उसने कहा, वह तिशबी इल्याहा है। 2 Raja 1:8।
यदि वे एलिया के नहीं बल्कि यूहन्ना के विषय में पूछते वह कैसा मनुष्य था, तो उन्हें ये उत्तर मिलता, एक बालों वाला मनुष्य जिसकी कमर में चमड़े की पेटी बंधी थी। यूहन्ना की पूरी 6 माह की सेवाकाय उस खंड में निरूपित है जहां अंतिम अर्थात चौथी पीढ़ी को विशेष रूप से पहचाना और परिभाषित किया गया है। उनके लिए लाओदिकियाई संदेश परमेश्वर की वाचा के लोग होने के उनके दावे पर सीधे प्रहार करता है। वह आने वाले कोप की चेतावनी देता है, जैसा कि पेड़ों की जड़ों पर प्रहार करती कुल्हाड़ी के चित्र से दिखाया गया है। उस संदेश में ये भी शामिल था कि मसीह यूहन्ना से आरंभ हुई परख की प्रक्रिया को पूरा करेगा। आगे मत्ती में यीशु यहूदियों को सर्पों की संतान भी कहते हैं और वे यूहन्ना के वृक्ष काटने के विषय से विचार को उठाकर बताते हैं कि ऐसा क्यों है।
या तो वृक्ष को भला ठहराओ और उसका फल भला, नहीं तो वृक्ष को बुरा ठहराओ और उसका फल बुरा, क्योंकि वृक्ष उसके फल से पहचाना जाता है। हे सांपों की संतान, तुम जो बुरे हो अच्छी बातें कैसे बोल सकते हो, क्योंकि हृदय की भरपूरी से ही मुख बोलता है। भला मनुष्य अपने हृदय के भले खजाने से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे खजाने से बुरी बातें निकालता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि लोग जो भी व्यर्थ वचन बोलेंगे न्याय के दिन उसके लिए उन्हें लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तेरे वचनों के कारण तू धर्मी ठहराया जाएगा और तेरे ही वचनों के कारण तू दोषी ठहराया जाएगा। मत्ती 12:33-35।
दूसरी आज्ञा के अनुसार न्याय का दिन चौथी पीढ़ी में है। न्याय उस संदेश पर आधारित है जो हम बोलते हैं और वो संदेश हमारे हृदयों से निकलता है। हम जो संदेश बोलते हैं वही निर्धारित करता है कि हम पतरस की चुनी हुई पीढ़ी हैं या विषधर सर्पों की पीढ़ी। ये दोनों वर्ग एक परीक्षात्मक प्रक्रिया के अंत में प्रकट होते हैं, जहां मसीह गंदगी झाड़ने वाले की तरह अपना फर्श साफ करता है। 10 कुआरियों के दृष्टांत में तेल की भांति संदेश को या तो बुरे हृदय या अच्छे हृदय द्वारा दर्शाया जाता है। मसीह के संदर्भ में ये भी कहा गया है कि ये विषधर सर्पों की पीढ़ी, जो चौथी और अंतिम पीढ़ी है, किसी चिन्ह की खोज करती है और उन्हें दिया जाने वाला एकमात्र चिन्ह योना का चिन्ह था।
तब कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उत्तर दिया और कहा, गुरु, हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। परंतु उसने उत्तर देकर उनसे कहा, दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह मांगती है और उसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, केवल भविष्यद्वक्ता योना का चिन्ह। क्योंकि जैसे योना 3 दिन और 3 रात बड़ी मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के हृदय में रहेगा। निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ न्याय में उठ खड़े होंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना के प्रचार पर पश्चाताप किया और देखो, यहां योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी भी इस पीढ़ी के साथ न्याय में उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो पृथ्वी के छोरों से सुलेमान की बुद्धि सुनने आई थी और देखो, यहां सुलेमान से भी बड़ा है। मत्ती 12:48-44।
मसीह ने यहूदियों को विषधर की पीढ़ी कहा और वे न्याय के उदाहरण के रूप में योना का संदेश तथा सुलेमान की बुद्धि का संदेश उपयोग करते हैं। यीशु प्रसंग के आधार पर और 2 गवाहों के साथ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि विषधर की पीढ़ी चौथी पीढ़ी है, क्योंकि चौथी पीढ़ी में ही न्याय संपन्न होता है। 144,000 अंतिम दिनों का ध्वज अर्थात चिन्ह है, जैसे परमेश्वर की व्यवस्था और सप्त। योना का चिन्ह पुनरुत्थान का चिन्ह है, जो मसीह के समय के यहूदियों के लिए उसका बपतिस्मा था, जब पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा था। योना का अर्थ कबूतर है। योना, यूहन्ना रहस्योद्घाटक, दानियल, यूसुफ और लाजरे 144,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें 3.5 दिन तक सड़क पर मरा पड़ा रहने के बाद पुनर्जीवित किया जाता है। उस समय वे लाओदिकियों से फिलाडेल्फियों में रूपांतरित होंगे और इस प्रकार वे 7 में से 8वें बन जाएंगे। योना बपतिस्मा का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि उसे पानी में फेंक दिया गया और जब बड़ी मछली ने उसे निगल लिया तो वह प्रतीकात्मक रूप से मर गया। इसके बाद वो पुनर्जीवित हुआ, जैसे यूहन्ना जब उसे खौलते तेल से बाहर निकाला गया, और जैसे दानियेल जब उसे सिंहों की मांद से बाहर निकाला गया, और जैसे यूसुफ जब उसे कुएं से बाहर निकाला गया, और जैसे लाजर जो मसीह के समय का मुहरबंदी का चमत्कार था। यहूदियों ने योना के चिन्ह को, जैसा कि मसीह के पुनरुत्थान द्वारा दर्शाया गया था, उससे अधिक स्पष्ट नहीं देखा जितना एडवेंटिज्म 9:51 के चिन्ह को देखता है, जो कि योना का ही चिन्ह है। हम इन विषयों को अगले लेख में जारी रखेंगे।
अब परमेश्वर के लोगों, निकट और दूर तक पहुंचने वाली चेतावनी का भार तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है, और जो इस संदेश को समझने की खोज में हैं, उन्हें प्रभु ऐसा वचन प्रयोग करने के लिए नहीं ले जाएगा जो उस नींव को कमजोर कर दे और उन स्तंभों को हटा दे जिन विश्वास ने सातवें दिन के एडवेंटिस्टों को आज जो वे हैं बनाया है, जो सत्य परमेश्वर के वचन में प्रकट की गई भविष्यवाणी की रेखा के साथ हम आगे बढ़ते हुए अपनी क्रमबद्धता में खुलते गए हैं, वे आज भी सत्य हैं, पवित्र अनंत सत्य, जिन्होंने हमारे अनुभव के अतीत में कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए भविष्यवाणियों में सत्य की कड़ी को देखा, वे प्रकाश की हर किरण को स्वीकार करने और उसका पालन करने के लिए तैयार थे। वे प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, खोज रहे थे, सत्य के लिए ऐसे खोद रहे थे जैसे छिपे खजानों के लिए। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा था और हमारा मार्गदर्शन कर रहा था। अनेक सिद्धांत आगे रखे गए जो सत्य का आभास कराते थे, परंतु गलत अर्थ लगाए और गलत लागू किए गए शास्त्र वचनों के साथ इतने घुले मिले थे कि वे खतरनाक भूनों तक ले गए। हम भली भांति जानते हैं कि सत्य के प्रत्येक बिंदु की स्थापना कैसे हुई और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उस पर अपनी मुहर कैसे लगा दी, और उसी समय लगातार आवाजें सुनाई देती थीं, यह रहा सत्य, मेरे पास सत्य है, मेरे पीछे चलो। परंतु चेतावनियां भी आईं, तुम उनके पीछे न जाना, मैंने उन्हें नहीं भेजा, फिर भी वे दौड़े। देखें यिर्मयाह 23:21। प्रभु का मार्गदर्शन स्पष्ट था और ये कि सत्य क्या है इस विषय में उसके प्रकाशन अत्यंत अद्भुत थे। स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर ने एक एक बिंदु स्थापित किया, जो तब सत्य था वही आज भी सत्य है, परंतु आवाजें सुनाई देती ही रहती हैं, ये सत्य है, मेरे पास नया प्रकाश है, परंतु भविष्य सूचक विषयों में ये नए प्रकाश वचन के गलत अनुप्रयोग में प्रकट होते हैं और परमेश्वर की प्रजा को उन्हें थामे रखने के लिए किसी लंगर के बिना बहाव में छोड़ देते हैं। यदि वचन का विद्यार्थी उन सत्यों को ग्रहण करे जो परमेश्वर ने अपनी प्रजा के मार्गदर्शन में प्रकट किए हैं, और इन सत्यों को आत्मसात करे, उन्हें पचाले और उन्हें अपने व्यावहारिक जीवन में उतारे, तो वे प्रकाश के जीवित माध्यम बन जाएंगे। परंतु जिन्होंने स्वयं को नए सिद्धांतों का अध्ययन करने में लगा दिया है, उनके पास सत्य और त्रुटि का मिला जुला मिश्रण होता है, और इन बातों को प्रमुख बनाने का प्रयास करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया है कि उन्होंने अपनी बत्ती दिव्य वेदी से नहीं जलाई जो वो अंधकार में बुझ गई है। चयनित संदेश पुस्तक 2:113-104।